प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संविधान का राजनीतिक दर्शन के ऊपर चर्चा करेंगे। संविधान के दर्शन यानी फिलॉसफी से अभिप्राय है संविधान की बुनियादी अवधारणाओं से, जैसे अधिकार, नागरिकता, लोकतंत्र आदि। संविधान में निहित आदर्शों जैसे समानता, स्वतंत्रता हमें संविधान के दर्शन करवाती है। हमारे संविधान इस बात पर जोर देता है कि उसके दर्शन यानी फिलॉसफी पर शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक तरीकों से अमल किया जाए तथा उन मूल्यों को जिन पर नीतियां बनी हैं, इन नैतिक बुनियादी अवधारणाओं पर चलकर उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा भारतीय संविधान की विशेषताएं या उपलब्धियाँ क्या क्या हैं। तो विशेषता क्या होती है, किसी चीज़ को पहचाना जा सके। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसकी पहली विशेषता है वो लिखित है। दूसरा, कठोर व लचीला का मिश्रण है। संघात्मक सरकार है, संघात्मक सरकार उसे कहते हैं जहां दो या दो से स्तर की सरकारें होती हैं। जैसे भारत में हम देख सकते हैं कि भारत में केंद्र सरकार है इस समय नरेंद्र मोदी जी की, और राज्य सरकार हम दिल्ली में रहते हैं तो केजरीवाल सरकार है ना। और स्थानीय स्तर पर हम देखते हैं नगर निगम की सरकार, जिसे हम सीढ़ी की सरकार बोलते हैं। मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो हम देखते हैं हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। जब संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, मगर संपत्ति के अधिकार को हमने हटा दिया 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। अब ये मौलिक अधिकार नहीं है। इसी प्रकार मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं। मौलिक कर्तव्य हमारे इस समय वर्तमान में 11 हैं, जब पहले हमारे 10 मौलिक कर्तव्य होते थे। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमने 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा था, जो रूस यानी सोवियत संघ से प्रेरणा लेकर हमने अपने संविधान में डाले थे। तो हम देखते हैं मौलिक कर्तव्य हमारे वर्तमान में 11 हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मतलब ये होता है कि जब राज्य के पास पैसा हो तो वो इन नीतियों को लागू करे। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की बात करते हैं कि हमारे जो कोर्ट है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जिला लेवल का कोर्ट हो, चाहे राज्य स्तर का कोर्ट हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर का सर्वोच्च न्यायालय हो, वो निष्पक्ष होकर अपने कार्य करते हैं। इकैरी नागरिकता की बात करते हैं, हमारे संविधान की विशेषता है। इकैरी नागरिकता का मतलब ये होता है कि हम भारत के नागरिक हैं सिर्फ, जबकि हम संघात्मक देशों में देखते हैं जैसे अमेरिका में, कनाडा में, तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता मिलती है। एक नागरिकता तो राज्य की मिलती है और दूसरी मिलती है देश की। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि हम न्यूयॉर्क के, अमेरिका में न्यूयॉर्क है तो हम न्यूयॉर्क के निवासी भी हैं और यूएसए अमेरिका के भी निवासी हैं, मगर भारत में सिर्फ इकेरी नागरिकता है तो हम कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप है। संसदीय शासन व्यवस्था हमने लिया। संसदीय प्रणाली का मतलब ये हुआ कि जो हम यहाँ पे संसद सर्वोच्च है, संसद ही जो कानून बनाती है वो सर्वोच्च है, और यहाँ जो संसद है उसमें जनता के प्रतिनिधि कानून बनाने के लिए बैठते हैं। सामाजिक न्याय की बात करते हैं। सामाजिक न्याय का मतलब होता है समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना होना, चाहे वो जाति के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव, लिंग आधारित भेदभाव, किसी भी प्रकार का भेदभाव जब नहीं होता तब हम उसे कहते हैं सामाजिक न्याय। फिर हम कहते हैं राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय एकता है, सब भारतीयवासी हैं, सब में चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, सब अपने देश को प्रेम करते हैं। धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि भारत में 7 मुख्य प्रमुख धर्म हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट। इसके और भारत में जो सरकारें हैं वो किसी को भी संरक्षण नहीं प्रदान करती। भारत के नज़र में सभी जो हैं धर्म बराबर हैं। राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता, किसी भी तरह का पैसा नहीं देता धर्म को बढ़ाने में। ये व्यक्ति का आंतरिक मामला है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये है कि व्यक्ति अगर जिस किसी को मंदिर बनाना है, मस्जिद बनाना है, तो उसी समुदाय के लोग मिलकर बनाएंगे, सरकार उसमें कोई योगदान नहीं करेगी। जो सरकारी संस्थाएं हैं, जिनको शिक्षा संस्थान हैं, वहां पर भी जो पढ़ाई होगी वो धार्मिक पढ़ाई नहीं होगी। अगर बच्चे को अगर बच्चे को एजुकेशन लेनी है, मतलब उर्दू क्या बोलते हैं हम, कुरान की आयतें पढ़नी है, तो मकतब मदरसा में जाएगा, ठीक है। धार्मिक शिक्षा हिंदू की लेनी है तो वैदिक स्कूलों में जाएगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करते हैं, सम्मान करते हैं। अल्पसंख्यक कौन होते हैं? जो संख्या में कम हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं भारत में हिंदुओं को छोड़ के सभी अल्पसंख्यक हैं, तो यहाँ पर सभी लोगों का संरक्षण दिया जाता है। मूलभूत ढांचा संशोधन के बाद बरकरार है, तो हम देखते हैं हमारे संविधान का बेसिक ढांचा जो है वो सही है, और थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं मगर जो बेसिक ढांचा है वो अभी भी बना हुआ है। सार्वभौमिक मताधिकार है, सभी को वोट देने की आज़ादी मिली है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति लिंग का हो। जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर की उम्र पूरी कर चुका है उसे वोट देने का अधिकार दिया गया है, बशर्ते वो पागल ना हो, दिवालिया ना हो, और या किसी सरकार द्वारा उसको अवैध घोषित ना किया गया हो कि वो नागरिक ना रहे। यानी सभी व्यक्तियों को सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया, सब लोग वोट डाल सकते हैं। राष्ट्र पहचान हमारा क्या है? झंडा है। इस प्रकार ये हमारे संविधान की विशेषताएं हैं। हम देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के अनुसार भारतीय संविधान का निर्माण परंपरागत सामाजिक ऊंच नीच के बंधनों को तोड़ने और स्वतंत्रता, समानता और न्याय के नए युगों में प्रवेश के लिए हुआ है। ये कमज़ोर लोगों को उनका वाजिब हक सामुदायिक रूप से हासिल कराने की ताकत देता है। हम देखते हैं संविधान की कुछ विशेषताओं का वर्णन किया गया है, जैसे स्वतंत्रता, आज़ादी, सामाजिक न्याय, किसी के साथ भेदभाव ना होना, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान, यानी जो माइनॉरिटी है, जो हिंदुओं के अलावा सारे समुदाय, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, बुद्धिस्ट हो, सबके अधिकारों का सम्मान करते हैं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब किसी भी धर्म को बढ़ावा न देना, सभी धर्मों को समान मानना, और व्यक्तिगत मामला है धर्म। हम कहते हैं कि भारत ना तो हिंदुओं का देश है ना मुसलमानों का देश है, यहाँ पे सभी धर्मों को बराबर इज्जत दी गई है। जैसे हम देखते हैं पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, ईरान, इराक मुस्लिम कंट्री हैं, ब्रिटेन, अमेरिका क्रिश्चियन कंट्री हैं, मगर भारत के लिए हम ये शब्द यूज़ नहीं कर सकते, ये हिंदुओं का देश है, यहाँ सभी मज़हबों को बराबर आदर दिया जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात करते हैं कि सभी को वोट देने का अधिकार है। संघवाद, जैसे कि मैंने बताया कि संघवाद का मतलब कि दो या दो से ऊंचे स्तर की सरकारों का होना। जो प्रक्रियात्मक उपलब्धि है संविधान की वो हम बात करते हैं। संविधान, भारतीय संविधान का विश्वास राजनीतिक विचार विमर्शों से हुआ है। संविधान सभा असहमतियों को भी सकारात्मक रूप से देखती है, यानी अगर उन जो संविधान सभा थी उसमें अगर किसी को ऑब्जेक्शन था, कोई विरोध था, उन्होंने उसे पॉजिटिव वे में लिया। संविधान सभा किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला बहुमत से नहीं, सबकी अनुमति से लेना चाहती थी। बहुमत से नहीं, सबकी अनुमति होनी चाहिए, वह समझौते को महत्व देते थे। संविधान सभा जिन बातों पर अडिंग रही वही हमारे संविधान की विशेषता बनाते हैं। कुछ बिंदुओं पे भारतीय संविधान की आलोचना भी करते हैं लोग, जैसे कहते हैं बहुत लंबा संविधान है, विस्तृत है, 448 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 8 अनुसूचियाँ हैं। कोई कहता है ये पश्चिमी देशों के संविधानों से प्रावधान लिया, यानी पश्चिमी देशों की देख रेख करके उनका कॉपी पेस्ट मारा है हमने अपने संविधान में, ये लोग भी आलोचना करते हैं। संविधान के निर्माण में सभी समूह का प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सभी लोग उपस्थित नहीं थे, मगर हम कहना चाहेंगे कि संविधान में सभी का प्रतिनिधित्व था, चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, सभी लोगों का हमने प्रतिनिधित्व देखा है इसके अंदर संविधान सभा ने, और जो उन्होंने बनाया है बहुत बढ़िया संविधान बनाया है। तो इन्हीं संविधानों की विशेषताओं को आज हम बता रहे हैं, उस पर सभी बच्चे ध्यान दें।